अब आगे। रश्मि बार बार अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद रही थी और रौनक से उसकी पसंद पूछ रही थी, लेकिन रौनक ने शॉपिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। वो अपना बुझा बुझा सा चेहरा लिए चारों तरफ देख रही थी। वहीं आहान अब रौनक को इस तरह से देखकर इरिटेट होने लगा था, क्योंकि उसे तो वो बिंदास सी लवली लड़की पसंद थी जो हमेशा मारधाड़ की बातें किया करती थी, उससे झगड़ा किया करती थी। इसी तरह की रौनक पसंद थी, लेकिन रौनक का एकदम से शांत होना आहान को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अब दो टी शर्ट लेकर सीधा रौनक के सामने जाकर खड़ा हो गया था और उसकी ओर देखकर चहकता हुआ बोला, हे मिस हवा हवाई, बताओ जरा इनमें से कौन सी शर्ट तुम्हारे लिए ठीक रहेगी? आखिरकार गांव की ट्रिप से लौटने के बाद हम दोनों की शादी होने वाली है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत शादी की शॉपिंग अभी से स्टार्ट कर दूँ। और शादी के बाद डोंट वरी, मैं तुम्हें शर्ट और जीन्स, ट्राउज़र और तुम चाहे तो मेरे भी कपड़े पहन सकती हो। मैं तुम्हें यही कपड़े पहनाऊंगा, डोंट वरी। अरे मैं वो टिपिकल हस्बैंड नहीं हूँ जो अपनी बीवी को सलवार कमीज़ में देखना चाहता है। अरे मैं तो अपनी बीवी को अपने जैसे कपड़ों में ही देखना चाहूँगा। अब जैसे ही आहान ने बिल्कुल टिपिकल आदमियों वाली बात की, रश्मि का दिल किया कि वो साइड में रखा हुआ गुलदस्ता उठाए और आहान के सर पर दे मारे, लेकिन फिर उसने जैसे जैसे खुद के इमोशंस पर कंट्रोल किया और आहान को देखकर बोली, छछुंदर जाओ जाकर अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। इतना बोलकर रौनक वहां से हट गई थी, लेकिन तुरंत आहान एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और दोनों शर्ट को उसकी तरफ दिखाते हुए बोला, देखो इनमें से दोनों शर्ट पसंद कर लो और मैंने डिसीजन लिया है कि जैसे कपड़े तुम पहना करोगी ऐसे ही कपड़े मैं भी पहना करूंगा। दोनों सेम सेम कलर की जीन्स, सेम सेम कलर की शर्ट, सेम कलर के जूते, सेम कलर के गॉगल्स, चश्मा, परफ्यूम, बेल्ट, इतना ही नहीं खुद हर चीज़ हम दोनों सेम सेम बिल्कुल एक जैसी खरीदा करेंगे। आहान को तो लग रहा था कि उसकी कॉन्वर्सेशन इस वक्त कोई नहीं सुन रहा है, जबकि मुंह खोले दादाजी, नानीमा, रश्मि, आकाश, साथ साथ ध्रुव, जो कि बड़े ही ध्यान से उन लोगों की कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे। सुमित अभी वहां नहीं पहुंचा था, उसने आकाश को बता दिया था कि वो उसे थोड़ी देर होगी। वहीं नानीमा तो खुद को रोक नहीं पाई और कन्फ्यूजन से पूछने लगी, लेकिन आहान बिटवा, अगर आप दोनों इसी तरह से सेम सेम कपड़े पहनोगे तो आप में से लड़का कौन होगा और लड़की कौन होगी ये कैसे पता चलेगा? अब जैसे ही नानीमा ने बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाकर ये बोला, सब लोग जो कि थोड़ी देर पहले आहान की इरिटेटिंग बातें सुन रहे थे, अब नानीमा की बातें सुनने के बाद सब जोरों से ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं, क्योंकि वो एकदम से ही काफी ज्यादा फनी सिचुएशन सी बन गई थी। वहीं रौनक भी खुद को रोक नहीं पाती और छोटी सी स्माइल उसके चेहरे पर भी आ गई थी और वो वहां से हटकर सीधा कहीं और जाकर बैठ गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट कोई भी देखे। वहीं दूसरी ओर राधिका जल्दी ही अपने ऑफिस में पहुंच चुकी थी। ऑफिस में पहुंचने के बाद जैसे ही उसने आज ऑफिस में एंट्री ली, सब लोग हैरानी से राधिका को देखने लगे थे। अब राधिका हैरान थी कि उसका तो आज दूसरा ही दिन है, तो इस तरह से सब लोग उसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब से राधिका की जॉब लगी थी तो आज उसका दूसरा दिन ही था, उसका ज्यादा दिन नहीं हुए जॉब ज्वाइन किए हुए। अब राधिका को सब लोग हैरानी से क्यों देख रहे हैं? अब राधिका थोड़ा हैरान हो गई कि उसने क्या किया है, सब लोग उसे इस तरह से क्यों घूर कर देख रहे हैं। अभी उसे अपनी डेस्क पर बैठे हुए केवल 5 मिनट हुए थे कि तभी एक प्यून वहां आया और अदब से बोला, राधिका मैडम, आपको बॉस अपने केबिन में बुला रहे हैं। अब राधिका सोचने लगी कि उसके बॉस मिस्टर भारद्वाज साहब को हुआ क्या है, आते ही मुझे क्यों बुला रहे हैं। उसके कंपनी का बॉस मिस्टर भारद्वाज एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसने राधिका की सारी बातें सुनने के बाद उसकी काबिलियत को देखकर उसे नौकरी दे दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई फ्रेशर अगर इस तरह से जॉब ज्वाइन करते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस काम करते हुए तो होगा ही, इस तरह से थोड़ा ही ना होगा। तो ये सोचते हुए उन्होंने राधिका को अपनी कंपनी में जॉब दे दी थी। अब राधिका उस प्यून की बात सुनकर जल्दी ही अपने बॉस से मिलने के लिए उसके केबिन में चली गई थी। उसने देखा कि उसका बॉस कुर्सी पर दूसरी तरफ फाइल लेकर बैठा हुआ था। राधिका ने जल्दी ही बोलना शुरू कर दिया, जी सर आपने मुझे बुलाया। तब उसके बॉस की आवाज आती है, राधिका कल हमने आपको एक इम्पोर्टेंट फाइल दी थी, क्या आपने उस फाइल को पूरा पढ़ लिया? तब राधिका जल्दी से बोली, जी सर मैंने वो सारी फाइल पढ़ लिया है। तब उसका बॉस बोला, अच्छा ठीक है, तो उसे फाइल में आपने कितनी कोटेशन रखी है और आपको क्या लगता है वो जो प्रोजेक्ट वो हमारी कंपनी को मिल जाएगा, हमने जो कोटेशन रखी है क्या वो बिल्कुल ठीक रखी है? और राधिका को समझ में नहीं आया कि वो अपनी बॉस को जवाब दे तो क्या दे। तब राधिका हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन बॉस मुझे तो नहीं पता कि कोटेशन क्या कितनी रखनी चाहिए कितनी नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं फ्रेशर्स हूँ और मैं आपको पहले दिन ये बात बता चुकी थी, अभी मुझे धीरे धीरे सब चीजों के बारे में नॉलेज मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब उसका बॉस गुस्से से भर उठा और सख्त आवाज में बोला, एक काम करो अपना बोरिया बिस्तर समेटो, जाओ यहाँ से, अब आपको यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी उसके बॉस ने अपनी शक्ल राधिका को नहीं दिखाई दी। अब राधिका पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि उसे तो नौकरी लगे हुए अभी तो मुश्किल से 2 दिन ही हुए थे, इतनी जल्दी से उसके बॉस ने उसे फायर भी कर दिया बिना गलती के, और उसकी गलती भी नहीं बताई गई थी कि आखिरकार उसकी गलती क्या थी, उसका कसूर क्या था। अब तो राधिका की आंखें नम हो उठी थी और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने क्या किया है? अगर मुझे कुछ गलती हुई है तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकाले, मेरे लिए ये जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है।
कहीं ना कहीं जॉब लगने के बाद राधिका को एक उम्मीद नजर आई थी कि वो अपना ख्याल रख सकती है और उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। लेकिन अब अपने बॉस की बात सुनकर राधिका थोड़ा सा डर गई थी कि वो किस तरह से अपना पेट पालेगी, किस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजारेंगी। अब राधिका की आंखों में नमी देखकर, साथ ही साथ उसका गिड़गिड़ाना देखकर, उसके बॉस के चेहरे पर एक शातिराना स्माइल आ गई थी और वो कड़क आवाज में बोला, ठीक है मिस राधिका जी, हम उसके लिए आपको एक चांस दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगनी होगी। अब जैसे ही उसके बॉस ने ये कहा, राधिका तो पूरी तरह से चौंक गई थी और नासमझी में बोली, लेकिन मैंने गलती क्या की है और मैं किस बात की आपसे माफी मांगू? पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि आखिरकार मेरी गलती क्या है। अब उसके बॉस ने तुरंत अपनी कुर्सी राधिका की तरफ घुमा दिया और खड़े होकर बोला, मिस राधिका, आपकी गलती ये है कि आपने मुझे चैलेंज किया है। अब जैसे ही अपने बॉस की कुर्सी पर सीधे सीधे सुमित को देखकर, राधिका की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं और उसके होंठ कंपकंपाने लगे थे। वो हैरत से बोली, आप सुमित, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मिस्टर भारद्वाज कहाँ गए? क्या किया आपने उनके साथ? बोलो, जवाब दो। ऐसे बोलकर राधिका सुमित की ओर देखने लगती है। फ्लैशबैक, कल रात जब राधिका ने सबको मना कर दिया कि 15 दिनों के लिए गांव नहीं जा पाएगी क्योंकि उसकी नई नई जॉब लगी है, तो इसीलिए सुमित गुस्से से भर उठा था और अपने कमरे में आकर उसने सबसे पहले अपने सेक्रेटरी को फोन किया। और राधिका जिस कंपनी के लिए काम किया करती थी, पूरी की पूरी भारद्वाज इंडस्ट्रीज को सुमित ने खरीद लिया था
और ऑफिशियली अब वो राधिका का बॉस बन बैठा था। और साथ ही साथ उसे ये भी पता चल चुका था कि राधिका ने मिस्टर भारद्वाज के साथ पूरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके अकॉर्डिंग वो नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ पाएंगी। अगर उसने नौकरी छोड़ने की कोशिश की तो कंपनी उस पर भारी भरकम चार्ज लगा सकती है। अब तो सुमित की बातें सुनकर राधिका ने तुरंत अपना सर पकड़ लिया और बेजार होकर सीधा कुर्सी पर बैठ गई। तब सुमित राधिका को हैरान परेशान देखकर उसके पास आया और उसकी ओर देखकर सख्त आवाज में बोला, अब तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा परिवार चाहता है कि तुम हमारे साथ गांव चलो तो मतलब चलो। आज से 15 दिनों के लिए तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी, समझी तुम? और डोंट वरी, तुम्हारे पैसे भी नहीं काटेंगे। ये बोलकर सुमित अपने आंखों पर चश्मा चढ़ाता हुआ जल्दी ही लंबे लंबे कदम बढ़ाकर सीधा मॉल की ओर रवाना हो चुका था। वहीं राधिका सुमित के इस तरह के बिहेवियर से पूरी तरह से चौंक गई थी और फटाफट से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और उसने ऑफिस में ही नाचना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर प्रियंका का बॉयफ्रेंड मॉल में तो पहुंच चुका था, साथ ही साथ वो चारों तरफ अपनी आंखें घुमाकर देख रहा था, लेकिन उसे अभी तक अरमान सिंघानिया की बीवी दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया था।